या महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया का ये महोत्सव सभी लोग मनाते हैं वैसे इसको, इवन जो कर्मी लोग हैं वो भी इसको बहुत मानते हैं और उनको लगता है कि इस समय जो है सोना खरीदना चाहिए, और अक्सर लोग जो है सोना खरीदते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है, उसे फिर वो सो जाते हैं। लेकिन इसका मुख्य जो कारण है अक्षय तृतीया का, वो सोना खरीदना नहीं होता बल्कि सोना दान करना होता है। तो सोना जो है दान करना चाहिए, जितना हो सके हमें दान करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम इस समय में करते हैं अक्षय तृतीया में वो अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक कार्य विशेष रूप से बढ़ा देने चाहिए। ऐसे कि अगर बहुत ही पावर सप्लाई अगर देनी हो ना तो कुछ विशेष स्विचेस होते हैं, अगर हम उसमें अगर लगाएंगे तो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई हमको मिलेगी। तो पावर सप्लाई जो है मिलती है अगर कोई अक्षय तृतीया के समय में, ये जो समय है 21 दिन का चलता है, ये समय बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। 21 दिन वैसे है चंदन यात्रा के लिए होता है, अक्षय तृतीया यहां से शुरू होती है, पर ये इसका बेनिफिट हमें 21 दिन मिलता है, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसका हमें अक्षय फल मिलता है। तो इसीलिए बहुत ही पवित्र दिन है। और आज का दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की थी, तो आज का दिन है, तो आज के दिन ब्रह्मा जी ने दुनिया बनानी शुरू की थी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काय को दुनिया बनाई, जिसलिए बनाई, लेकिन आज के दिन बनाई, आज के दिन बनानी शुरू की थी ब्रह्मा जी ने। जितने चारों युग हैं, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर या हमारा प्यारा कलयुग, ये सारे युगों की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया के दिन। आज के दिन जो है सारे युगों की शुरुआत होती है। आज हैप्पी बर्थडे हमारे कलयुग का, ओके। और ऑफकोर्स उस समय जो था 18 फरवरी का दिन था जब कलयुग शुरू हुआ था, सो बर्थडे का दिन वैसे है कलयुग का 18 फरवरी, ओके। तो हैप्पी बर्थडे ऑफ कलयुग। और इस बार जो है अक्षय तृतीया इस समय पड़ रही है, तो इसलिए आज के दिन कलयुग भी शुरू हुआ था। त्रेता द्वापर सतयुग सारे इसी दिन शुरू होते हैं। और साथ ही गंगा माई भी जो है आज के दिन अवतरित हुई थी यहाँ पर, और आज के दिन जो है वेद व्यास जी ने महाभारत लिखनी शुरू की थी, तो इसलिए भी ऑस्पिशियस है बहुत। आज के दिन से जो है रथ यात्रा शुरू का महोत्सव जो है वो शुरुआत हो जाती है, रथ बनाना शुरू करते हैं आज के दिन से। तो अब अक्षय तृतीया का समय आता है तो रथ बनाना शुरू करेंगे, तो फिर जुलाई के महीने तक रथ तैयार हो जाता है, और फिर जुलाई के महीने में फिर रथ यात्रा शुरू हो जाती है। आज के दिन जो कुबेर हैं उनको HOD बनाया गया था खजाने का। वैसे ओरिजिनल सप्लायर जो है वो तो लक्ष्मी मैया है, लेकिन इस दुनिया में देवताओं के बीच में जो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिया जाता है धन का देवताओं में, वो है कुबेर जी। तो उनको HOD बनाया जाता है इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन। आज के दिन वो भी HOD बनते हैं, ठीक है। और आज के दिन से जो है कीर्ति और गोपीनाथ, जिनके बारे में आज हम सुनने वाले हैं थोड़ा बहुत, तो अक्षय तृतीया के दिन आज उनको और गोपाल जी को 21 दिन तक जो है चंदन लगाया जाता है, तो ये भी होता है अक्षय तृतीया के दिन। और क्या क्या होता है, आई थिंक दीज वर द रीजंस। और कुछ परशुराम, द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड परशुराम, परशुराम जी का भी प्राकट्य दिवस है। और कुछ, अच्छा, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे। और तो कुछ नहीं होता, राइट, कोई बहुत सारी चीजें हैं उसको मिली थी। सो इसीलिए जो है ये अक्षय तृतीया बहुत ही ऑस्पिशियस है, तो हमें आज के दिन और आज के दिन से आने वाले जो 21 दिन है तो उसमें हमें घनघोर अभ्यास करना चाहिए। जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे वो आप करिए, ऐसा अभी प्रेमांजन प्रभु बता रहे थे हमको कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है फंडा है कि जो काम आप 21 दिन कर लेंगे तो उसकी आपको आदत आ जाएगी, वो आपके DNA में आ जाएगा। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल ने यह अक्षय तृतीया के कॉन्सेप्ट से लिया है कि अगर 21 दिन अगर आप कोई कार्य करेंगे तो फिर आपकी आदत में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना, हम सुबह नहीं उठ पाते, कई लोग नहीं उठ पाते भाई, नींद से प्यार है। तो लेकिन अगर 21 दिन यहां पर उठना शुरू कर देंगे अगर आप, तो फिर होगा क्या, अक्षय फल प्राप्त होगा, यानी आप सुबह उठना शुरू कर देंगे। अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, काफी समय हो गया 1947 से आपने अभी तक भगवद गीता नहीं खोली है, तो अक्षय तृतीया में बड़ा अच्छा समय है, शुरुआत कर सकते हैं, भगवद गीता खोल के पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो इसीलिए ये अक्षय तृतीया का समय बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो इसी संदर्भ में ऐसे हर साल होता है, हम लोग जो भी वैष्णव आएंगे आज सभी मंदिरों में कथा चलती है माधवेंद्रपुरी जी की, ओके। और इसको बहुत डिटेल में हमने सुना हुआ है श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, बुखार वन से, जितना डिटेल में महाराज समझाते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। महाराज तो ऐसी ऐसी डिटेल्स देते हैं जो हमने मतलब कभी पढ़ी नहीं, कहीं देखी नहीं, लेकिन महाराज ऐसी ऐसी डिटेल बताते हैं। रीजन बीइंग महाराज ने खुद जो है ये माधवपुरी, ये जो अक्षय तृतीया का समय होता है इसी समय जो है कनाडा में ज्वाइन किया था, और ये और वहाँ पर श्री जो किशोर गोपीनाथ के वहाँ पर DTs भी थे, तो इसलिए ये जो लीला है ये बहुत प्रिय है महाराज को। तो इसीलिए महाराज जब इसको बताते तो एक अलग ही रस से बताते हैं महाराज, और महाराज की फेवरेट है। अगर कार्तिक भक्त जाएंगे तो महाराज फिर अपनी फेवरेट लीला सुनाते हैं। कुछ भक्त सोचते हैं महाराज हर साल यही क्यों सुनाते हैं, क्योंकि इसमें उनका प्रेम भरा है महाराज का इस लीला के अंदर। तो महाराज बहुत ही डिटेल में बताते हैं इसके अंदर, और बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसके अंदर। तो आज इसको थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लीला है ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को सुनाई है वास्तव में, कि जो किशोर गोपीनाथ गए तो वहां पर उन्होंने देखा है और उनको प्रणाम किया, नृत्य किया वहां पर, कीर्तन किया, और जब नृत्य कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं दंडवत प्रणाम किया, तो फिर जो भगवान की माला थी और जो मुकुट था वो महाप्रभु के ऊपर गिरा। तो ये जो है रेसिप्रोकेशन का तरीका है भगवान का अपने भक्तों के साथ। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है हालांकि, लेकिन जब इस तरह की कुछ चीज होती है कि कोई फूल गिरा तो यानी कि ना भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, अदरवाइज भी करते हैं बट दिस इज वेरी ग्रॉस करते हैं। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न है, और फिर महाप्रभु ने क्या किया, सुनाना शुरू किया कि आओ मैं आपको बताता हूँ एक महान भक्त के बारे में, और फिर श्री माधवेंद्रपुरी के बारे में बताना शुरू किया महाप्रभु ने। तो इसीलिए हम कभी भी तीर्थ स्थल में जाएं तो ये बड़ा मुख्य कार्य है सुनना, जा करके वैष्णवों से सुनना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारे दर्शन क्लियर होते जाएंगे। तो दर्शन सुनना फिर होते हैं क्लियर दर्शन। भक्तिदास ठाकुर के समय में एक बार जो लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति उठा और दर्शन करने के लिए चला गया। कई बार लोग करते ना ऐसे कि दर्शन खुले पर्दा खुला लोग उठते हैं, चलो जी ये तो बोलता रहेगा हम भगवान के पास चलते हैं। तो ऐसे ही भक्तिदास ठाकुर के समय भी ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति उठा और उठ करके दर्शन करने चला गया। तो प्रभुपाद जी ने तो भक्तिदास महाराज ने कहा तुम्हारी आई मसाज कैसी रही, फिर कल आई मसाज कर ली तुमने। तो उसको ये समझाया भक्तिदास महाराज ने कि जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हो ये इतना ज्यादा जरूरी है कि सुनते सुनते ही जो है ये दर्शन क्लियर होंगे, नहीं तो हम क्या देख पाएंगे। थोड़ा सा देख लिया डेकोरेशन अच्छी है, ऊपर फूल पत्ते अच्छे लगाए हुए हैं, आए ऊपर मैचिंग है ये दिस दैट दैट्स इट, लेकिन कोई चीज देख करके निहारना कम कर पाते हैं जब हम अच्छे से सुनते हैं। तो महाप्रभु ने भी सुना था और सब महाप्रभु सुबह सुना रहे हैं। तो श्रवण का जो है बड़ा महत्व है। तो उसके बाद अब श्रवण करा रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु श्री माधवेंद्रपुरी के बारे में। तो श्री माधवेंद्रपुरी जो कि उनके गुरु के गुरु यानी कि परम गुरु है उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से महान वैष्णव उनका नाम था श्री माधवेंद्रपुरी, और वो अयाचक वृत्ति के थे यानी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो इसे जब वो एक बार उनका वृंदावन आने का जब कार्यक्रम बना तो वृंदावन गए, तो वृंदावन में वहां पर काफी लोग थे, लेकिन और लेकिन उनका बड़ा यश था कि एक ऐसा अयाचक वृत्ति का भी एक एक साधु महात्मा आए हुए हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में था ऐसा। तो उनके पास एक बहुत ही सुंदर लड़का आया और उसने जो है उनको दूध पिलाया और साथ मटकी भी दी कि ना आप ये पी लीजिए। कहता आप ये बताओ मांगते क्यों नहीं हो, भिक्षा क्यों नहीं करते आप, मांगना चाहिए ना, भूख लगे मांग लेना चाहिए, ऐसे अच्छा ही लगता है हमको कि भूखा रहे हमारे गाँव में, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो भिक्षा करता है उसको तो हम देते ही देते हैं, उसको तो मेरे जितने भक्त देते हैं, फिर जो नहीं मांगता ना उसको तो फिर मैं स्वयं आके देता हूं। तो वो भक्त जो होते हैं जो भगवान में पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान भरण पोषण करते हैं। तो अगर हमारा सबसे आधारभूत अगर यही फंडा क्लियर नहीं कि भगवान पालने वाले हैं, तो इसका मतलब तो ऐसा व्यक्ति नौसखिया भक्त भी नहीं है। नौसखिया भक्त के अंदर भी कम से इतना विश्वास होता है कि ना मेरे को पालने वाला तो भगवान है। इसलिए सिर्फ गृहस्थों के लिए है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी को जो है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरे को पालने वाले कौन, भगवान है। ये आधारभूत चीज है। तो इसीलिए भक्तों जब पूरा साक्षात्कार होता है इसीलिए भक्त हमेशा निर्भय रहता है, फियरलेस, देयर इज नो फियर इन डिवोटीज। तो भक्त को ये विश्वास होना चाहिए भगवान मेरे को पालने वाले, और इसी तरह से श्री माधवेंद्रपुरी जी को पूरा पूरा विश्वास था कि मेरे को पालने वाले तो भगवान है। तो जब वो देंगे थैंक यू वेरी मच, नहीं देंगे यानी भगवान चाहता है मैं व्रत रखूं, सिंपल। तो सरल जीवन जिसका भक्त होता है उसका भक्ति बहुत मक्खन वाला ही चलती है। जो व्यक्ति कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए भक्ति बहुत मुश्किल है, लेकिन सरल मन वाले के लिए सरल विचार वाले के लिए भक्ति बहुत ही सरल है। इसे प्रभुपाद जी बोला करते भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल, डिफिकल्ट फॉर द क्रूकेड। तो श्री माधवेंद्रपुरी बहुत सरल है और वो जानते हैं कि मेरा भरण पोषण करने वाले तो ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी आए उनके पास बच्चे के रूप में, बहुत सुंदर, इतने सुंदर हैं कि उनके दर्शन करने मात्र से ही उनकी भूख प्यास मिट गई। तो भगवान के दर्शन करें तो भूख प्यास मिट जानी चाहिए भगवान के दर्शन करने के बाद। जैसे कुछ लोग बताते हैं ना वो है ना वो सेवा कुंज है ना वृंदावन में, वहां पर ना जो लोग जाते हैं ना फिर वो लोग ना पागल हो जाते हैं, वहां पर ना कुछ लोग अपना वीडियो कैमरा लेकर गए थे नेशनल ज्योग्राफिक वाले, और फिर वो जब वीडियो बना रहे थे ना तो फिर वहां फिर वो देखा उन्होंने किस तरह से राधा कृष्ण को देख लिया, उन्होंने फिर वो पागल हो गए। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान को देखने के बाद हम पागल नहीं होते, भगवान को देखने के बाद हमारा पागलपन दूर चला जाता है, फिर हम समझदार हो जाते हैं बल्कि। एंड कृष्णास दर्शन इज नॉट चीप, प्रभुपाद जी ने कहा। तो इसलिए जब भगवान के दर्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारी भूख प्यास जो है वो हमेशा के लिए बढ़ जाएगी वास्तव में। तो यही माधवेंद्रपुरी जी के साथ हुआ, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं तो उनकी भूख प्यास वैसे ही मिट गई थी, लेकिन अब उसके बाद जब दर्शन किए तो उन्होंने जब दिया दूध तो फिर उनका पी लेना, शाम को फिर से आऊंगा मैं ले जाऊंगा इसको। लेकिन तुमको कैसे पता चला? कहते वो गांव के यहाँ की ग्वालिने आई थी, वो बता रही थी कि यहाँ पर एक अयाचक वृत्ति का बैठा हुआ साधु, तो इसीलिए उसके लिए कुछ ले जाना। तो मैं कहा चलो ठीक है ले चलते हैं, दूध ले चलते हैं, हमारे यहाँ देखो भूखा रहे हैं, पसंद नहीं है हमको, तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए। तो उसके बाद जो है माधवेंद्रपुरी ने जब ये पीना शुरू किया, इतना अमृतमय था ऐसा दूध, बोला कहाँ का दूध होगा ये। तो दूध पिया, दूध पीने के बाद फिर उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट का मतलब चैंटिंग हरे कृष्ण, ठीक है, चैंटिंग हरे कृष्ण। ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ था, महाराज ने मेरे को बोला, श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने, महाराज ने कहा देखो मैं अभी एक घंटा रेस्ट करूंगा। कहेंगे ठीक है महाराज, मैं अभी अनाउंस करता हूँ, अभी आप एक घंटा थोड़ा रेस्ट करें। कहते हैं एक मिनट, रेस्ट का मतलब आई विल चैंट हरे कृष्ण। हमारे यहाँ से क्या होता है, हम चैंटिंग हरे कृष्ण करते हैं फिर हम रेस्ट करने आते हैं। कहते बहुत नाम किया, बहुत नाम लिया आज ना, एक आदर्श के दिन इज टू टायरिंग, चैंट हरे कृष्ण। तो जो उन्नत वैष्णव होते हैं दे चैंट हरे कृष्ण एंड दैट इज हाउ दे रिलैक्स। अब चैंटिंग कर रहे थे तो हमको तो नींद आती है ऑफकोर्स, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों को नींद आती है भगवान की इच्छा से। तो भगवान की इच्छा से जो है, जो उनको थोड़ा सा डोज ऑफ हुए तो उनको सपने में जो है आए भगवान स्वयं, और भगवान ने बताया श्री माधवेंद्रपुरी को कि ना ये मुगलों के अटैक की वजह से मेरे को जो है भक्तों ने छुपा दिया था मिट्टी के नीचे, लेकिन यहाँ काफी समय से पड़ा हुआ हूँ, मेरे को बाहर आना है, अब बड़ी गर्मी लग रही है मेरे को, तो मुझको बाहर निकालो वहां से, और फिर जो है बता दिया मेरा एड्रेस क्या है, कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ मैं, वो भी बता दिया, कौन सी झाड़ी के नीचे कौन सी कहाँ पर दबाऊ, ये पूरा बता दिया। तो माधवेंद्रपुरी की आंख खुली, तो आंख खुली, उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे सपना आया मेरे को। तो निश्चित रूप से भगवान जो है मुझको बताना चाह रहे हैं कि मुझको उस फला फला जगह पे जाना चाहिए, वहां पर ठाकुर जी दबे हुए और वो चाहते हैं उनकी सेवा करें। तो तब जो है उन्होंने कुछ भक्तों की मदद से वहां पर जाकर के झाड़ी झाड़ियां काटी, बहुत ही थिक झाड़ियां थी, और सारी झाड़ियां काटी और सब वो फरसा वगैरह लेकर गए गए थे, और क्या बोलते उसको फावड़ा लेकर गए थे, उससे जो है सारा हटाया, और फिर वो पर्टिकुलर जगह थी वहां पर कोमलता से खोदना शुरू किया। जब भगवान को जैसे ऐसे खुदाई करते थे भगवान की विग्रह की, तो ऐसा नहीं होता ये खींचा खींचा के मारा, आराम आराम से खुदाई करनी होती है, ऐसे ऐसे करके मिट्टी हटाई जाती धीरे धीरे करके करके, और फिर इस तरह से जो है ठाकुर जी वहां पर प्रकट हुए और वहां पर सबने भगवान के दर्शन किए। तो ये खूबसूरती है भगवान के शुद्ध भक्तों की। भौतिक जगत में जो रियलिटी है ना, ये भी एक ड्रीम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इवन ड्रीम इज अ रियलिटी, दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, और ये नेटवर्क कभी फेलियर नहीं होता। ये आध्यात्मिक जगत का जो नेटवर्क है जिसमें कि सपने में भी असलियत वाली बातें हो जाती हैं, तो ये जो है सिर्फ आध्यात्मिक जगत में होता है, मटीरियल वर्ल्ड में इवन रियलिटी इज अ ड्रीम। प्रभुपाद जी बताते हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में कि दिन और रात ये दोनों सपने हैं असल में। बस रात का सपना क्या है, वो टूटा हुआ है, और ये दिन का सपना है ये ना श्रृंखला में, इसलिए लगता नहीं ये तो रियलिटी है, ये रियलिटी है, लेकिन असल में ये भौतिक जीवन में क्या है, इवन दिन हो या रात हो ये दोनों ही सपने। इसलिए जब हम उस सपने में जाते हैं तो इस सपने को भूल जाते हैं, और जब इस सपने में होते हैं तो उस सपने को भूल जाते हैं। तो भौतिक जगत में दिन हो या रात हो दोनों ही सपना है वहां सब है। तो कोई बोल सकते हैं यानी कि प्रभु जी ये जो भागवतम क्लास चल रही है ये भी एक सपना है? हाँ, ये भागवतम क्लास है ये भी सपने में है, लेकिन ये सपने से जगाने वाली अलार्म क्लॉक है, तो इसकी आवाज से इसकी ध्वनि से हम लोग जगते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमको सपने से जगाती कौन है, ध्वनि। तो ये ध्वनि जो हरे कृष्ण महामंत्र की है, ध्वनि जो कि श्रीमद् भागवतम की है, ये ध्वनि हमको जगाती है, अन्यथा यहां पर डे टाइम जो है वो भी सपना है और रात का समय वो भी सपना है। और आध्यात्मिक जगत में चाहे आप जगे हुए हैं या सोए हुए हैं, दोनों के दोनों जो है जागृत अवस्था है, वास्तव में दोनों में कम्युनिकेशन चलता है। तो शिला महामित्र पुरी के साथ यहां पर भगवान कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे? सपने के माध्यम से। और इस पूरी लीला के अंदर तीन बार सपने में आके कम्युनिकेशन हुआ, तीन बार शिला महामित्र पुरी के साथ। तो जब ये जब पता लगा कि सपने में, तो तुरंत जो है वहां पर गए, वहां से ठाकुर जी निकले, और ठाकुर जी बहुत भारी, कुछ भक्तों के साथ गए थे तो उनको उठा नहीं पा रहे थे। तो फिर जो सबसे ज्यादा बलिष्ठ ब्रजवासी थे उनको बुलाया गया, और फिर श्री माधवेंद्र पुरी के आशीर्वाद से ये बलिष्ठ लोग जो थे ये भगवान के विग्रह को उठा सके। तो भगवान को उठाना ना, कौन उठाएगा भगवान को? बड़े बड़े योगी अपने मन से नहीं उठा पाते, तो बिना भगवान के आशीर्वाद के भगवान को कोई नहीं उठा सकता। तो ये बलिष्ठ थे, हालांकि बलवान थे, लेकिन इसलिए उठा पाए क्योंकि श्री माधवेंद्र पुरी, उनका आशीर्वाद मिला इनको। और फिर उन्होंने उठाया, और उठा करके फिर गोवर्धन के ऊपर लेकर गए, और वहां पर और बड़े पत्थर भी रखे गए जिससे कि भगवान का आसन बनाया जा सके। और भगवान को आसन में जो है भगवान विराजमान किया, और पीछे भी एक पत्थर रखा गया ताकि उस पर टिकाया जा सके भगवान को। और भगवान को इस तरह से टिका दिया गया वहां पर उनके विग्रह को। और भगवान जब इस तरह से है, उसके बाद फिर भगवान की धुलाई करनी शुरू की, जो विग्रह है उनकी साफ सफाई करनी शुरू की। तो उसके लिए सबसे स्पेशल वाटर पड़ोस से लेके आए, गोविंद कुंड से। तो जितने भक्त थे गोविंद कुंड में पानी लेकर के आते थे, अपने सर पे रखते थे, और भक्त लोग जो है लेकर के आए, और करीब 900 लीटर पानी लेकर के आए, उससे जो है उनका उनको स्नान कराया गया। तो भगवान के भक्त ना भगवान की सेवा करने में कभी आलस नहीं करते। जो कि नौसखिए भक्त होते हैं उनका ना क्या होता है, सेवा के घंटे थोड़े से अगर एक्स्ट्रा हो जाए, बस कहते ये सेवा मेरी थोड़ी है, ये सेवा तुम्हारी है ना। जैसे घर में अगर मान लीजिए अगर आलसी भक्त रहते हैं, कहते हैं आज भोग लगाने की तेरी बारी है, मैं थोड़ी लगाऊंगा, थर्सडे है ना आज, तू लगा। कह ठीक है लगा दूंगा, लेकिन बर्तन आप धो रहा। फिर जो नौसखीय भक्त होते हैं उनको सेवा करने बड़ा आलस आता है, कहता है लेकिन वो वाली सेवा तो मेरी नहीं है, मेरी सेवा तो सिर्फ ऐसे घुमाने की है, बस ऐसे लेकर जाने की तो मेरी सेवा नहीं है। मेरा तो आज सेवा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, मेरे तो प्रसाद खाने की सेवा आज। तो जो नौसखी भक्त होते हैं वो सेवा करने में आलस करते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सेवा करने में कभी आलस नहीं करते, कभी भी नहीं, हमेशा सजग सक्रिय रहते हैं भगवान के भक्त। तो नौसखी भक्त होगा उसको क्या, थोड़ी सेवा करने के बाद आराम चाहिए होगा, उसको रेस्ट भी करना होगा, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब तीन दिन का रहेंगे वृंदावन में हॉलीडे, थक गए यार, भूख बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, थक गए, पक गए, निचोड़ गए, मर गए, खप गए, सेवा बहुत कर दी ना। तो नौसखी भक्तों को क्या इस प्रकार से ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है अभी यार, लेकिन जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है व्यक्ति, उतना ज्यादा सेवा में और निखरता जाता है, और ज्यादा रिफ्रेश फील करता है। तो इस प्रकार से श्री माधवेंद्र पुरी और उनके साथ जितने भी ब्रजवासी थे वो उतने ज्यादा सक्रिय थे ठाकुर जी की सेवा में। तो इस तरह से भगवान का अभिषेक किया गया, सारे भक्तों ने जो है भगवान के लिए, भगवान को स्नान कराया अच्छे से, स्नान कराने के बाद भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन का व्यवस्था की गई, और भगवान का सवाल अभिषेक भी हुआ, सॉरी यस, उसमें जो पंचगव्य होता है पंचगव्य से भगवान का अभिषेक कराया गया। पंचगव्य यानी कि उसमें योगर्ट आता है, मिल्क आता है, घी आता है, गोबर आता है, और काऊ यूरिन आता है, इससे भगवान का अभिषेक कराया गया। उसके बाद पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराया गया, पंचामृत में आता है योगर्ट, घी, दूध, और साथ में शुगर, और वन मोर थिंग, शहद, हनी। तो ये पांच से जो है भगवान का फिर उनसे अभिषेक कराया गया, और इस प्रकार से भगवान का बहुत डिटेल अच्छे से जब अभिषेक हुआ, उसके बाद फिर भगवान के लिए भोग की तैयारी की गई, और भोग तैयार करने के लिए तरह तरह के भक्तों को इन्वाइट किया गया। 10 तो ब्राह्मण ऐसे थे जो भगवान के लिए तरह तरह के राइस बना रहे थे, 5 ऐसे ब्राह्मण थे जो कि गीली सब्जी बना रहे थे, 5 ऐसे ब्राह्मण थे जो सूखी सब्जी बना रहे थे, और 20 ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ढेर सारी चपाती बनाई जिन्होंने भगवान के लिए, और तरह तरह के लोग आए थे। इतना हजूम था कि वहां से प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरा गोवर्धन जो था वो प्रसाद से, भोग से ढक गया, इतना भोग अर्पण किया गया। हम कहेंगे 1008 कम, 1,08,000 आइटम हो तो भी शायद कम होगा, इतना सारे आइटम बना के पूरा गोवर्धन भर गया था भोग की ऑफरिंग से कि ना ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति होती है वास्तव में कि हम कितना देते हैं ठाकुर जी को, तो भगवान ये देख रहे हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से वहां पर भक्तों ने इतना सारे व्यंजनों की व्यवस्था की भगवान के लिए, और इस प्रकार से भगवान को जब भोग लगा और भगवान को भोग लगने के बाद फिर भगवान की आरती हुई, भगवान की आरती की गई, भगवान के तरह तरह के जो पुष्प थे, जितने वृंदावन जितने भी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स थे सबको इकट्ठा किया गया और इसे जो है भगवान को अर्पित किया गया, भगवान की आरती की, और भगवान के इस प्रकार से भव्य रूप से ये इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम चला। और एक बहुत ही रिच एक क्षत्रिय था, उसने भगवान के लिए मंदिर भी बना दिया, तो एक छोटा सा जो है एक बड़ा सुंदर सा मंदिर बना दिया गया भगवान के लिए। और अलग अलग गांवों से लोग जो है उन्होंने सेवा बांधी हुई थी कि हम आएंगे हम सेवा करेंगे, और फिर इस गांव के लोग आएंगे फिर ये सेवा करेंगे, और इस प्रकार से भगवान की सेवा सबने बांधी हुई थी और भगवान की सेवा इस प्रकार से चला करती थी। तो इस प्रकार से जो सेवा सबको डेलीगेट की, सबको ट्रेनिंग दी श्री महाजेंद्रपुरी ने, वहां पर इनफैक्ट भक्तों को दीक्षा भी दी ताकि वो डीटी वर्शिप कर सके। तो अक्सर गुरुजन जो होते हैं वो दीक्षा ऐसे देते हैं ताकि भक्तों को सेवा में लगाया जा सके। दीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी हूं, बहुत बड़ा 30 बार खाऊं इसलिए मेरे को ना महाराज को दीक्षा देनी पड़ी, ना ना लल्लू लाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, तुम्हारी कोई भी तुम्हारी योग्यता नहीं थी कि तुम सेवा कर सको, लेकिन गुरुजन जो है हमें दीक्षा दे करके योग्यता के पथ पर चला देते हैं ताकि हम सेवा कर सकें, और सेवा करेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। जो करता सेवा उसको मिलता है भक्ति का मेवा, तो इसीलिए गुरुजन जो है दीक्षा भी देते हैं। तो इसलिए श्री महाजेंद्रपुरी ने कई भक्तों को वहां पर दीक्षा दी ताकि वहां पर प्रमाणिक रूप से डीटी वर्शिप हो सके, डीटी वर्शिप की ट्रेनिंग भी दी उनको। तो इस प्रकार से श्री महाजेंद्रपुरी ने सबको सेवा लोकेट किया और वो खुद जो है सुपरवाइज किया करते थे भगवान की सेवा। तो ये सब जो है सारा कार्यक्रम 2 साल चला, और 2 साल बाद भगवान ने फिर से अपना कम्युनिकेशन का रास्ता खोला, यानी कि सपना, और सपने के माध्यम से भगवान ने कहा कि ना 2 साल हो गए लेकिन ना मेरे को अभी भी बड़ी गर्मी लगती है, तो ऐसा करो मेरे लिए चंदन लेके आओ, मलय जो देश है वहां से, वहां का चंदन बड़ा अच्छा होता है, तो वहां का चंदन मेरे लिए लेकर के आओ और मेरे ऊपर उसका चंदन का लेप करो ताकि गर्मी के मौसम में ना मेरे को ठंडक मिले। अब वैसे जो भगवान का रूप है वो दिव्य है, उसमें ना तो गर्मी का प्रभाव होता है ना सर्दी का प्रभाव होता है, भगवान के ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं होता, भगवान का दिव्य रूप है। लेकिन भगवान इस प्रकार से प्रकट करते हैं अपने भाव को, क्यों? क्योंकि सेवा देते हैं वास्तव में। ये जो विग्रह अवतार है बड़े विशेष अवतार है, वैसे भगवान के और भी अवतार होते हैं जैसे परोव्योम अवतार, ठीक है, चतुर्भुज अवतार, या भगवान अपने धाम में है वैकुंठ धाम में तो वो भगवान, वो भी भगवान का रूप है, लेकिन ये सारे के सारे जो है हमारे इंद्रियों के परे हैं इसलिए हम इनकी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन एक अवतार है जिनसे, जिनको हम इन आंखों से देख पाते हैं, इन प्रोटीन की आंखों से देख पाते हैं, ऑप्टिक फाइबर कॉर्निया और रेटिना वाली आंखों से देख पाते हैं, और वो है विग्रह अवतार, नहीं तो भगवानों वाला कैसे देखेंगे हम। तो इसीलिए जो है ये भगवान का बड़ा विशेष अवतार होता है विग्रह अवतार। जो सबसे लोएस्ट क्लास जो कॉन्शियसनेस होती है ना, उन लोगों कहते हैं कहां है भगवान जी, कोई भगवान भगवान नहीं है, कहां है भगवान, ऐसे ला रखा है भगवान भगवान कुछ नहीं भगवान। जो इससे थोड़े बेटर होते हैं वो कहते हैं देखो भगवान तो है मंदिर में ना, भगवान है बाकी और जगह भगवान नहीं, हाँ लेकिन यही जगह तो है मंदिर में तो भगवान है, ये उससे थोड़े बेटर लेवल के होते हैं, ठीक है। इससे बेटर लेवल के वो लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान अरे बिल्कुल है विग्रह में तो है, और साथ में मेरे जो दीक्षा गुरु है ना उनमें भी भगवान बसते हैं, कहते हैं इसलिए ना विग्रह का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, भगवान का बड़ा सम्मान। और दूसरा जब गुरु आएंगे तो भी भाई बड़ा सम्मान देता है, जब गुरु आएंगे ना आगे आगे बैठेगा अंगो महाराज जी हम भी आते हैं यहां पर, आप साल में एक बार आते हैं हम भी साल में एक बार आते हैं, क्योंकि वह गुरु का बहुत सम्मान करता है, कहता है यार आज रजाई में नहीं सोऊंगा, आज तो ये आज दीक्षा गुरु आ रहा है ना, आज तो देखो दिखाना भाई हमारी अटेंडेंस भी है, हम भी बहुत अच्छे भक्त हैं, तो ये थोड़ा और बढ़िया क्वालिटी का भक्त है भाई, इसने भगवान को विग्रह में तो देखा देखा साथ में हमने दीक्षा गुरु में भी देखा है। और इसे बेटर लेवल का भक्त वो होता है जो कि भगवान को विग्रह में भी देखता है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु और जितने भी वैष्णव हैं उन सबके हृदय में देखता है, ये भक्त ना बहुत अच्छे हैं, डिवोटीज आर सो गुड, इनमें चाहे कोई फॉल्ट बोले लेकिन ना ये फॉल्ट ना सारे के सारे नगण्य है और इनसिग्निफिकेंट। भक्त जो होते हैं ना प्रभु जी महान होते हैं, चाहे इनमें 1000 दोष हों लेकिन वो दोष इतने तुच्छ हैं क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं प्रभु जी, भक्त लोग इतने महान है, वैष्णव की सेवा करना तो ये परम सिद्धि है जी, ये वक्त और अच्छा है, क्योंकि ये सारे भक्तों में भगवान की उपस्थिति को देखता है कि परमात्मा रूप में जिन सभी हृदय में है, और ये भक्त भगवान के कितने नजदीक है, ये और अच्छी क्वालिटी का भक्त है। और जो परमहंस होते हैं वो सभी हृदय में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं, कहते चाहे भक्त हो अभक्त हो चाहे कोई और योनि में हो, लेकिन सभी प्राणियों के प्रति जो है करुणा होती है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति सभी जगह देखते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे होती है कि विग्रह में जो व्यक्ति भगवान को देखना शुरू करेगा, फिर जो है वो बाकी जगह पर भी भगवान को देखना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से जो विग्रह है वेरी वेरी स्पेशल अवतार ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान जो है, अब भगवान ने सेवा दी माधवेंद्रपुरी जी को। अब श्री माधवेंद्रपुरी ने जो है सोचा कि मैं फ्लाइट बुकिंग करा दूं अपनी, तो तुरंत मैं मलय पहुंच जाऊंगा। तो भगवान ने फिर जो है कुछ भक्तों का अप्रोच किया कि मेरी फ्लाइट बुकिंग करा दो। तो भक्तों ने कहा लेकिन फ्लाइट तो अभी आई नहीं है, ये तो आगे कलयुग के कामचोर लोग हैं ना, उन लोगों के लिए आएगी जो चल नहीं पाएंगे, तो अभी तो फ्लाइट है नहीं। अच्छा ट्रेन? नहीं ट्रेन भी नहीं है, फिर कैसे जाएंगे माधवेंद्रपुरी? चल करके जाएंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं बोला माधवेंद्रपुरी जी ने, श्री माधवेंद्रपुरी को बड़ा हर्षोल्लास हुआ। श्री चैतन्य चंद्र ने लिखा है कि मतलब वो इतने ज्यादा हर्षोल्लास में, मतलब इतने आनंदित हो गए कि भगवान ने मुझको पर्सनली सेवा बोली कि मैं जाकर भगवान के लिए चंदन लेकर के आऊं। तो भगवान ने वहां पर सभी सेवाएं जो है डेलीगेट की और देखा सब सुचारू रूप से चल रही है, और फिर वो खुद वहां से चल पड़े भगवान के लिए चंदन लेके आने के लिए। और रास्ते भर जो है भगवान का नाम कीर्तन करते हुए चले जा रहे, चलते जा रहे। तो उन्हें साउथ की ओर मुड़े, और साउथ से फिर उनको जो है फिर जाना था मलय देश की ओर, जो कि जगन्नाथपुरी के पास है, तो वहां जाने का उनका प्लान था। तो रास्ते में फिर आया रेमुणा। रेमुणा में जब पहुंचे तो उनको पता लगा कि रेमुणा में भगवान का बड़ा विशेष विग्रह अवतार है, वो है गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी के बारे में पता लगा, तुमको यही पता लगा कि गोपीनाथ जी की सेवा रेमुणा में इतनी उत्तम क्वालिटी की सेवा होती है। तो उन्होंने पता किया कि अच्छा यहाँ पर ठाकुर जी की क्या क्या सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं वो सेवा करते हैं, अच्छा क्या क्या भोग लगता है, कहते सुबह सुबह ये भोग लगता है, दोपहर को ये भोग लगता है, और शाम को जो है बड़ा विशेष भोग लगता है। तो दूध का बना बड़ा विशेष एक चीज होती है, उसको बोलते हैं अमृत केली, वो भगवान को भोग लगती है, वो तो अद्भुत होती है, और वो ठाकुर जी को बहुत पसंद है। कहते अच्छा ऐसा क्या? कहते कितना अच्छा होता अगर मुझे पता लग जाता कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते, तो ना मैं भी अपने ठाकुर जी के लिए अमृत के लिए ऐसा बनाता। तो भक्तों में यही भाव होना चाहिए कि हर जगह पर सेवा बुद्धि, सेवा बुद्धि जितनी ज्यादा भक्ति होगी उतनी ज्यादा हमारी भोग बुद्धि जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इसे माधवेंद्रपुरी ये सोच रहे कि ना अगर ऐसा हो जाए कि मुझे इंग्रेडिएंट्स पता लग जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो जब शाम का समय आया, तो ये पता लगा कि शाम का समय है भगवान को भोग लगने का अमृत केली का। तो उन्हें उनमें आया कि काश मुझको भी मिल जाती ना, तो मैं भी चख लेता और चख के देख लेता इसमें क्या क्या डालते हैं वहां के भक्त। तभी मन में आया अगर ये कितना, मतलब मैं कैसा जीव हूं मैं कि अभी तो भगवान को भोग लगा नहीं और मैं वहां पर उस चीज को खाने का सोच रहा हूं, कितना मतलब पापी हूं क्या, और बड़ा गिल्टी महसूस हुआ उनको। और फिर जो है वहां चले गए, कहता नहीं नहीं ये तो ये भावना गलत है, वास्तव में ये भावना गलत है। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में तो सभी को जानते हैं, सारे भक्तों के भाव को जानते हैं, तो इसीलिए भगवान ने उनके भाव को जान लिया कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के मन में ये इच्छा है कि वो ठाकुर जी को सेम चीज बना करके भोग लगाए। तो भगवान ने जो इसका बंदोबस्त किया, फिर भगवान ने बंदोबस्त किया। हालांकि माधवेंद्रपुरी है वो दूर दूर रहते हैं, और वो क्या माधवेंद्रपुरी अकेले इसलिए ना करते थे कि ना प्रजल्पा ना करना पड़े किसी के साथ, इधर उधर की फालतू बातें ना करनी पड़े, तो इसीलिए माधवेंद्रपुरी अपने साथ किसी को रखते भी नहीं थे और अकेले रह करके नाम जप क्या करते थे। अब जो पर्व हम सोते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जो भक्त होते हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अकेले अकेले रहेंगे हम लोग, है ना, ये लोग इनको कीर्तन करने दो, इनको क्लास में बैठने दो, हम अकेले बैठ करके हारमोनियम पे प्रैक्टिस करेंगे, जय राधा माधव, कुछ ऐसे होते हैं भक्त। ये नौसखीय भक्त को हरगिज नहीं करना चाहिए, नौसखीय भक्त को चाहिए हमेशा भक्तों के संग में रहे। लेकिन क्योंकि माधवेंद्रपुरी जी ये तो सिद्ध वैष्णव है, इसलिए जो है ये हमेशा लोगों से दूर रहा करते थे और भजन में मग्न रहा करते थे, तो इसीलिए उनका ऐसा भाव था। तो भगवान ने जो है अपने भक्त के भाव को जान लिया। तो जब मंदिर के पुजारी थे, जब वो सो रहे थे, तो भगवान ने उनको जगाया। अगेन भगवान का तरीका कम्युनिकेट करने का क्या, सपना। सपने के माध्यम से भगवान ने पुजारी को भी इंडिकेट किया कि मेरा एक शुद्ध भक्त है, उसका नाम माधवेंद्रपुरी है, तो मैंने ना उसके लिए एक कटोरा अमृत के लिए रखा हुआ है अपने पर्दे के पीछे, विग्रह ऑल्टर जो है ना उसमें, ऑल्टर में जो पर्दा है उसे पीछे छुपा के रखा हुआ है, तो वो जो है उसको दे देना माधवेंद्रपुरी। कहते अच्छा वो उठे, ऐसा क्या, ये सपना था या सच था, एक बार जाकर चेक करते हैं। उसके बाद तुरंत हमने स्नान किया, स्नान करके जो है ऑल्टर में गए, और ऑल्टर में गए पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो वहां वाकई में जो 20 प्याले लगा करते उसमें से एक प्याला जो है यहाँ रखा था, 20 या 12 प्याले हुआ करते थे उनमें से एक प्याला जो है यहाँ रखा था, और ये जो प्याला है देखा, अरे और प्याला भी ऐसे रखा है कि मतलब वाकई छुपा के रखा था। तो वो जो जगह थी वहां पर थोड़ी अमृत के लिए गिरी हुई थी, तो वहां पर अमृत के लिए वो साफ की और ये जो प्याला था लेकर के ढूंढने चले गए। ये एकदम अमृत वेला का समय था, प्रॉपर अर्ली मॉर्निंग टाइम। उस वक्त जो है ढूंढ रहे कि भाई कहां है वो माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया है, कहां है वो माधवेंद्रपुरी। तो इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते फिर भक्तों ने बताया कि वहां है, वहां ढूंढते ढूंढते फिर इस तरह से माधवेंद्रपुरी के पास पहुंचे और फिर श्री माधवेंद्रपुरी को जो है उन्होंने ये अमृत खीर का प्याला दिया। और इस प्रकार से ये पुजारी ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे कहां है वो माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने ये अमृत प्याला, ये अमृत केली का प्याला चुराया है। तो इस प्रकार से भगवान गोपीनाथ का नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। अब हैरानी की बात यह है कि ना भगवान को भला खीर चोर हम क्यों बोले, भाई भोग तो इन्हीं को लगा ना, भाई ये भोग इनको लग गया, इन्होंने उसमें से लिया एक रख लिया कह भग लिया, तो चोरी क्या बात है, इन्हीं का था भाई, किसी को थाली में कुछ दो, हमने कुछ दिया, हमने कुछ पाया, हमने कहा प्रभु ये तो मैं नहीं पा पाऊंगा, अब ले लो, और मैंने अपने पास रख लिया बाकी दे दिया, तो ये चोरी थोड़ी है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं भाई खीर चोर गोपीनाथ, क्यों खीर चोर गोपीनाथ, इन्हीं को भोग लगा उसमें से एक रख लिया बाकी दे दिए, तो ये चोरी थोड़ी होनी चाहिए, फिर इसको हम चोरी काउंट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भोग लगता है तो भोग पे तो भगवान का अधिकार होता है, लेकिन भोग पाने के बाद जब वो प्रसाद बन जाता है तो इस पर अब ये प्रॉपर्टी भगवान की नहीं रहती, अब ये प्रॉपर्टी हो जाती है भगवान के भक्तों की। तो भगवान के भक्तों की प्रॉपर्टी में से भगवान ने चुराया है, इसीलिए वो कहलाए खीर चोर गोपीनाथ। ये प्रॉपर्टी भक्तों की, भैया प्रसाद, तो प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद इज दिव्य ट्रांसेंडेंटल, भगवान है साक्षात खाते हैं। ऑफ कोर्स कभी भी ऐसा लगता है कि लेकिन भगवान खाते तो ऐसा क्या होता है कि ना बच भी जाता है, मतलब एज इट इज रहता है, बचता भी क्या है, सब कुछ एज इट इज रहता है, तीन चपाती जाती है तीन चपाती वापस भी जाती है, जो दाल जाती है दाल वापस आ जाती है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, भगवान ने दाल खा ली खीर खा ली चपाती दो खाई एक छोड़ दी चटनी थी वो तो आधी खाई, कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान खाते भी हैं और प्याला वैसा का वैसा रहता है, या तो उसमें उंगली के निशान हो, मक्खन हो माखन मिश्री में उंगली के निशान हो कि भाई इतना खा लिया था बाकी भगवान ने छोड़ दिया, ऐसा होता नहीं होता, भाई तो भैया मार ताली निकाल थाली हो गया प्रसाद, ऐसे से कहना था हो गया हो गया हो गया प्रसाद हो गया प्रसाद हो गया प्रसाद प्रसाद, तो मार ताली निकाल थाली ऐसा है ना, सेम है, भगवान ने कुछ खाया नहीं, बस ऐसा क्या है भक्तों का विश्वास है, ऐसा ये लोग मान लेते हैं भाई खा लिया होगा, खा लिया होगा, नजर से खा लिया होगा, नाक से खा लिया होगा, खा लिया होगा, इनकी इंद्रियां बहुत एक्टिव है इनकी, खा लिया होगा और क्या। लेकिन भगवान जो है साक्षात खाते, बहुत खाते, जैसे हम एक बार आपको बता रहे थे, जैसे होली के समय में ऐसा होता है कि लोग जो है गुजिया लेके जाते हैं, मिसेस कपूर लेके गई मिसेस कुमार के पास गुजिया, ये मिसेस कुमार हैप्पी होली आपके लिए ये गुजिया, थैंक यू वेरी मच, आप गुजिया लेकर गए है ना, और फिर ये लेडी जाती है अपने अपना किचन में सारी गुजिया पलट देती है, उसमें ला देती है कलाकंद और फिर बंद कर देती है, कहती है आपको भी हैप्पी होली है, अरे हैप्पी होली हो गया, अब ये हैप्पी होली हो गया तो देखने वाला कहता है यार ये क्या हुआ, डब्बा गया था डब्बा वापस कर दिया, हैप्पी होली हो गया, ये क्या बात है जी। लेकिन अब जो डब्बा है उसका जो कॉन्टेंट है वो तो चेंज हो चुका है, गई थी गुजिया आया है कलाकंद, उस तरह से जाता है भोग आता है प्रसाद, जाती है सेवा आती है कृपा, तो इसे पैकेजिंग लेकिन सेम होती है, जो दाल गई थी दाल आई थी, खीर गई थी खीर आई है, चपाती गई थी चपाती आई, पैकेजिंग तो बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन अंदर का कंटेंट पूरा बदल चुका है। तो इसीलिए भगवान कहलाए खीर चोर गोपीनाथ, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रसाद चुराया है इन्होंने, और प्रसाद जो है ये भगवान की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रसाद जो होता है वो भक्तों की प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए इस्कॉन में अगर किसी का नेकलेस गिरा हो तो उसको वापस मिल जाएगा, लेकिन प्रसाद छोड़ दिया अगर आपने तो भूल जाए, फिर आपको नहीं मिलेगा। कहते वो मैंने ना यहाँ रसमलाई प्रसाद छोड़ के गया था कितनी देर पहले, कहते 2 मिनट पहले बस। सॉरी टू लेट। अरे प्रसाद जिसने छोड़ा है हमारे लिए छोड़ा होगा, ठाकुर जी की व्यवस्था है। क्योंकि प्रसाद जो है ये भक्तों की प्रॉपर्टी है, डिवोटी इज रियली रेलिश प्रसाद। तो इसीलिए वो कहना है खीर चोर गोपीनाथ। और उसके बाद श्री महादेन्द्रपुरी ने इतना रेलिश किया, एक एक ड्रॉप को इतना रेलिश किया किशोर गोपीनाथ के द्वारा दिया गया जो प्रसाद था, कि उसके बाद पूरा जो कंटेनर था उसको अच्छे से उसका कोना कोना जो खुरच खुरच के जो है उन्होंने खाया। उसके बाद जो वो मटकी थी उसका चूरा बनाया, उसका चूरा बना बना के वो भी जो है खाया करते थे, कि ये मटकी भी तो चुराई, ऐसे नहीं सिर्फ प्रसाद ही चुराया, ये मटकी भी तो चुराई मेरे ठाकुर जी ने मेरे लिए। तो इसीलिए ये मटकी भी जो है यही प्रसाद है। तो मटकी का कचूमर बना करके चूरा बना करके वो मिट्टी जो है खाई। उनको ये नहीं था मैं खाऊंगा फिर मेरे को स्टोन हो जाएगा, फिर मेरे को आरजी स्टोन जाना पड़ेगा दिल्ली में ना, फिर मेरा क्या होगा। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो देहात बुद्धि के परे होते हैं। जैसे कि श्री जीवो गोस्वामी जी का जो पाद प्रशालन जो स्थान है, शुरू शुरू हम लोग जब जाया करते थे ना यूथ फोरम में, तो हमारे हमको मोहन रूप जी ने कहा यहाँ पर श्री जीवो गोस्वामी अपने पांव धोया करते थे, तो ये मिट्टी आई खा लो। नहीं खा लो यार, इतनी खाएंगे 1 मिलीमीटर तो बन जाए गॉल बैटर में पक्की बात है। तो ऐसे कर क्या करते हैं, ऐसे छू के ना ऐसे कर लिया, क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता है कैसे हो ये रियली, ऐसा स्टोन नहीं हो सकता मेरे को, स्टोन हो गया तो किडनी में स्टोन हो गया, गॉल बैटर में स्टोन हो गया, कैसे हुआ, जीव को समझ गया पाद प्रक्षालन होता है। तो हमको ये विश्वास नहीं है, लेकिन पूरी मटकी खाए तो हमारी ध्यान बोधी सोचेगा अरे माँ पूरी मटकी, ये तो क्या लंग्स में भी स्टोन हो जाएगा, दिस इज सो मच। लेकिन जो भगवान का प्रसाद होता है, व्यक्ति की चेतना जब बहुत विकसित होती है तो देहांत बुद्धि के परे होता है व्यक्ति। तो भगवान के जो सिद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो सारा जो मटकी थी उसका कचूमर बना करके जो है उन्होंने खाया। और ये व्यक्ति के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए बहुत अचिंत थे, यार ये कैसे यार, मतलब ये भक्त लोग पागल ही, ऐसे मिट्टी का पूरा बर्तन खा लिया, गॉड यार टू सेंटीमेंटल यार, ये भक्त लोग ना पागल होते हैं। और भक्तों से पूछो कहेंगे कर्मी लोग पागल है, कर्मी लोग बोलते हैं ये भक्त लोग पागल है ये लोग। और भक्त क्या बोलता है, ओके पंजाबी, ओके मेरा पंजाबी डिपार्टमेंट है ठीक है, ऑल राइट Okay, so that is, तो जो भगवान तुम्हें बड़ा बस नहीं गया, yes, जो कर्मी लोग होते हैं बोलते हैं अरे भक्त पागल, भक्त बोलते हैं कर्मी पागल। तो सवाल आता है फिर, लेकिन पागल कौन है असल में, भक्त पागल है या ये कर्मी लोग ये पागल है, क्योंकि दोनों बोलते हैं ये पागल है, बोलते हैं अरे ये पागल है, दोनों ही दूसरे को पागल बोलते हैं। तो लेकिन असल में कौन पागल है फिर, अल्टीमेटली न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या रहता है, वो कौन पागल है। आप लोग बोलोगे नहीं नहीं रोजी कर्मी लोग पागल है, क्योंकि हम तो भक्त हैं हम भी पागल, वो पागल उसका खानदान पागल, हम क्या पागल। तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो असल में कर्मी व्यक्ति पागल है, क्यों, क्योंकि उसने भक्ति का रस का कभी आस्वादन ही नहीं किया, उसने सिर्फ संसार का खारा पानी चखाया बस। और भक्त ने तो संसार का खारा पानी भी चखाया और भक्ति का मीठा पानी भी चखाया, देखा जी ये वाला पानी मीठा है वो वाला पानी खारा है, इसलिए उसने भौतिक जगत का जो पानी है वो छोड़ के आया है और वो आध्यात्मिक जगत का मीठा पानी का आस्वादन कर रहा है। तो इसीलिए भक्त के कहने की वैल्यू है, कर्मी व्यक्ति के कहने की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने कभी चखा ही नहीं। तो कॉमेंट मार रहा है स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, कभी तूने चखी है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल लाइफ, एंड आई फिर क्या दूर से खड़े होकर कमेंट मार रहा है, ऐसे क्या होता है। पर लेकिन जो भगवान का भक्त है, एक समय था जब ये भक्त नहीं था तो उसने कर्मी जगत की भी स्वाद लिया हुआ है, कहता है बहुत ही घटिया स्वाद है, इतना बेकार नकली माल, लेकिन भक्ति खालिस शुद्ध ये बढ़िया। इसीलिए हम पहले तो ब्लू ग्रीन पहला करते थे लेकिन अब हम येलो कपड़े पहनेंगे। तो येलो कपड़े पहनता है क्यों? कहते हैं छोड़ो यार किसी के हाथ क्या पीले करने, अपने अपने कपड़े पीले कर लो यार। तो भैया दोनों जगह चक्कर क्या है? तो इसीलिए भक्त की जो ओपिनियन है उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। तो इसीलिए सो दैट मीन्स डिवोटीज का इट इज वेरी अचित कि कोई व्यक्ति पूरी मट्ठी कैसे खा सकता है कचोर बनाकर ये उसका। तो श्री माधवेंद्र पुरी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु ने जो है इसमें इसको चखा है, इसमें अपना प्रेम डाला है और इसीलिए उन्होंने जो है उसको चखा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वो जब गए थे कुमार हट्ट जब गए थे अपने गुरुदेव के जन्म स्थान पर, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान पर, तो वहां की जो रज है उसको भी खाते हैं महाप्रभु कि ना ये वो रज है जहां पर मेरे गुरुदेव प्रकट हुए। तो ये जो है ये दिव्य धरातल में जब चेतना होती है तो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर पाता है, बड़े आसानी से कर पाता है, सीमलेसली, कोई चिंता कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से वहां पर जब ये चखा उसके बाद फिर श्री माधवेंद्रपुरी ये जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। अब जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, जहां पर वो पहुंचे उससे पहले वहां पर माधवेंद्रपुरी जी का यश पहुंचा होता था। आप ही है ना माधवेंद्रपुरी? कहते हैं हाँ मैं हूं। कहते अरे जी आपके बारे में बड़ा सुना हमने कि आपके लिए भगवान ने खीर का कटोरा चुराया, आपके लिए चुराया। हाँ, और वहां से बच के निकलते कि वो ऐसी जगह जाए जहां पर कोई नहीं जानता माधवेंद्रपुरी। जहां पर पहुंचते हैं कहते आप माधवेंद्रपुरी जी है ना जिनके लिए भगवान ने खीर का कटोरा। अरे यार जहां जाए वहां पर भगवान का यश फैला हुआ है, भगवान के भक्त का यश फैला हुआ है। जैसे रामन राय से जब पूछा महाप्रभु ने कि सबसे यशस्वी कौन है, तो रामन राय जी का जो राधा कृष्ण का भक्त है वो सबसे अधिक यशस्वी है। तो जहां पर माधवेंद्रपुरी जी जाए वहां पर उनका यश पहले से ही फैला हुआ है। कहते अरे कमाल है, जहां जाता हूं वहां पर पहले से बैठे। तो कहते हैं आप ही है ना वो माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर का कटोरा चुराया। कहते हाँ मैं ही वो किसी और जगह वहां और भक्त बैठे। तो ये है भक्ति खासियत। जो भक्त लाइमलाइट के पीछे भागते हैं लाइमलाइट उनसे दूर भागती है, और जो भक्त लाइमलाइट से दूर भागते हैं लाइमलाइट उनके पीछे भागती है। जो लोग स्पॉटलाइट के पीछे भागते हैं स्पॉटलाइट उनसे दूर भागती है, और जो लोग स्पॉटलाइट से दूर भागते हैं स्पॉटलाइट उनके पीछे भागती है। तो ये जो कीर्ति है ना इसे कोई नहीं छू पाया। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कीर्ति दूर रखते हैं, वहां प्रशंसा वगैरह होगी छोड़ो ना, दूर हो यार ये यश से प्रसिद्धि से है ना दूर रहना चाहिए। लेकिन यश और कीर्ति ऐसे भक्त के पीछे भागती है। और जो लोग यश कीर्ति के पीछे भाग रहे होते हैं कहते हैं हमको भी तो कोई देख ले यार, हमको को माला बना दे, कोई पहचानता नहीं यार हमको, कमाल है। फिर वो अगर मटका सिल्क पहनेगा चमकदार होगा थोड़ा सा चिकना चुकना होके पहुंचेगा कहता अब तो कोई पहचान ले हमको, ये मेरी सीढ़ी है तुम सुनना तुमको शुद्ध भक्ति मिलेगी। ठीक है प्रभु जी थैंक यू। मेरी सीढ़ी की कदर नहीं है तुमको, ऐसा करिए आप सुख की तलाश करके मैंने अभी सीढ़ी लॉन्च की है आप अपनी बुक शॉप में रखा लीजिए आपका फंड रेजिंग हो जाएगी। वो एक साल बाद आया कहते कितनी सीढ़ी निकली, कहते दो गई है जी, वो दोनों आपके सेक्रेटरी आए थे वही ले गए और तो कोई लगी गाय नहीं है। अच्छा यार मेरी ये यश प्रसिद्धि क्यों नहीं फैल रही यार, ये क्यों? मतलब जो लोग स्पॉटलाइट के पीछे भागते हैं लाइमलाइट के पीछे भागते हैं उन वो लाइमलाइट उनसे दूर भागती है, और जो लोग लाइमलाइट के पीछे नहीं भागते लाइमलाइट उनके पीछे पीछे भागती है। तो यश और कीर्ति जो है भगवान की शुद्ध भक्तों को मिलती है, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त यश और कीर्ति के पीछे नहीं भागते, नेम और फेम। तो जो कीर्ति है वो भगवान के भक्तों के पीछे भाग रही है, और जो लोग हैं वो कीर्ति के पीछे भाग रहे हैं। तो तीन लोग जो हैं मैरी गो राउंड भाग रहे हैं, भक्त सबसे आगे पीछे सबसे आगे भाग रहे हैं उसके पीछे कीर्ति भाग रही है। अरे भक्त ओ भगत सुन ले मेरे को सेवा में लगा ले ओ भगत, और पीछे लोग भाग रहे कीर्ति 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 प्लीज कीर्ति आई लव यू कीर्ति कीर्ति मुझे छोड़ के मत जाओ कीर्ति कीर्ति प्लीज कीर्ति, लेकिन वो कीर्ति को छू नहीं पा रहे। तो कीर्ति को कोई नहीं छू पा रहा, भक्त है उसको छूने में इंटरेस्ट नहीं है उसका, कीर्ति उसके पीछे भाग रही है, कीर्ति पीछे लोग भाग रहे कीर्ति 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 प्लीज कीर्ति थोड़ी तो मिल जाए मुझे कीर्ति कीर्ति कहते भाग जाए ऐसे मैं भक्त के लिए हूं सर। सो नोबडी इज एबल टू टच कीर्ति। कीर्ति बिचारी उसको आज तक बिचारी कुंवारी बैठी है कहते कोई हाथ ही नहीं आता यार, मैं भक्त से मिलना चाहती हूँ, भक्त आगे आगे भागे जा रहा है, कहना है मेरे को नहीं चाहिए, तो जो मेरे पीछे भाग रहे हैं उन्हें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो कीर्ति जो है वो भगवान के भक्तों के लिए ही है वास्तव में, क्योंकि भगवान का भक्ति है जो इसको पचा सकता है, क्योंकि भक्त जानता है कि यश के चक्कर में बढ़ गए ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। यह मुझे किसी भक्त ने बोला, एस्ट्रोलॉजर था, कहता है अमलीला बाबू अभी आपकी कीर्ति सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है, अगर आप 32 रत्ती का पन्ना पहन लेंगे तो आपकी कीर्ति पूरे एशिया में हो जाएगी, और अगर साथ में आपने गोमेद भी पहन लिया फिर तो दुनिया में आप सबसे फेमस हो जाएंगे। मैं कहा भैया जितना हम पचा सकते ना ठाकुर जी उतना ही प्रसाद देंगे, ज्यादा प्लेट में डाला तो बदहजमी होगी, तो इसीलिए ना नहीं पहनना पन्ना। हमें क्या करना है, चैतन्य चरितामृत का पन्ना पन्ना खोलना है और इसको पढ़ना है, पन्ना नहीं पहनना है। तो कीर्ति के पीछे भागेंगे तो दुखी रहेंगे, और जो लोग कीर्ति के पीछे भागते हैं ना बहुत दुखी रहते हैं लोग, बहुत दुखी रहते हैं। ये तो चैंटिंग हरे कृष्णा करते हुए भी इतने दुखी होते हैं कि लगता पता नहीं हरि नाम काम करता है नहीं करता है, क्योंकि उनका मन में चैंटिंग चल रही कीर्ति 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 मुझे मिल जा कीर्ति कीर्ति, तो कब मिलेगी कीर्ति कीर्ति कीर्ति। लेकिन भगवान की शुद्ध भक्त जैसे श्री माधवेंद्रपुरी, इनके पीछे कीर्ति भागती है कि जहां जाएंगे उससे पहले जो है उस भक्त का वहां पर यश फैला हुआ है। तो भक्त जो है यश के पीछे नहीं भागता, यश जो है वो भक्त के पीछे भागता है। और फिर इतना आदर सम्मान हुआ, फिर वहां पर हरि कथा भी की श्री माधवेंद्रपुरी जी ने, और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन जगन्नाथ जी के, और वहां पर भक्तों ने उनको दो भक्त भी दिए कि जो है आपको जो है मलय से चंदन लाने की आवश्यकता नहीं है, आप कर्पूर भी लीजिए और आप चंदन भी लीजिए। तो 900 पाउंड जो था उनको चंदन दिया गया और 100 औंस साथ में कर्पूर भी दिया गया, तो कर्पूर भी मिलाया जाता है तो दोनों को एक साथ घिसा जाता है, तो इसलिए दोनों दिए गए, कहते हैं और आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आप लेकर के जाइए, ये भक्त हैं आपके लिए उठा करके लेके जाएंगे। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी में इतना जबरदस्त वेलकम हुआ, स्वागत हुआ श्री माधवेंद्रपुरी जी का। और फिर श्री माधवेंद्रपुरी जब वापस गए तो उन्होंने कहा वापस जाते हुए मुझे ना हमारे जो गोपीनाथ जी हैं जिनको आप सब जानते थे खीर चोर गोपीनाथ के रूप में, जिन्होंने मेरे लिए खीर चुराई, उनके दर्शन तो मेरे को करने हैं। तो इसलिए जो है वो फिर से वहां पर आए, और फिर से जब वहां पर आए तो फिर वहां पर भगवान ने फिर से उनके लिए बंदोबस्त किया था अमृत केली का, तो अमृत केली का आस्वादन किया उन्होंने फिर से, और फिर से जो है उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सारी अमृत केली खाई, और जो मटकी थी उसका भी आस्वादन किया, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी की ना बड़ी विशेष व्यंजन है जिसको कि ठाकुर जी ने मेरे लिए चुराया था, तो उसका फिर से आस्वादन किया। तो रात को उन्होंने यही प्लान बनाया कि मैं रात को यहीं पर ठहर जाता हूं, और रात को उन्होंने वहीं पर ठहरने का प्लान बनाया कि अगले दिन सुबह जो है सारा सामान लेकर के फिर हम गोपाल जी के पास आएंगे। तो जब रात को विश्राम करे तो तीसरी बार फिर से भगवान आए उनके सपने में, और भगवान ने कहा कि देखो मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, तो जो चंदन है आप वहीं पे दे दो, और वहां पर गोपीनाथ जी को जब लेप लगेगा तो मेरे को भी ठंडक अपने आप पहुंच जाएगी, मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता, समटाइम्स यू नो डिवोटीज से मेरे जो राधा मदन मोहन है ना वो आपके राधा गोपीनाथ से बहुत ज्यादा सुंदर है, ओके आपको इसमें प्यार है, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। आई नो वन डिवोटी, ही सेड प्रभु जी मेरे जो राधा माधव है ना दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, राधा माधव जो मायापुर में है उन्हीं का विस्तार है, आपके यहाँ पे राधा माधव है। कहते नहीं 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 मेरे पास ओरिजिनल है, वहां एक्सपेंशन है। अब ये भक्त का प्यार है, ऑफ कोर्स नो डाउट, बिकॉज ही इज डीटी ही सीज राधा माधव दैट लॉर्ड हिमसेल्फ इज देयर। तो भगवान के विग्रह जो है उनमें कोई अंतर नहीं होता, तो इसलिए सारे सारे डीटीज हैं वो दिव्य हैं। लेकिन जो नौसखीय भक्त होते हैं वो डीटी से तब कनेक्ट करते हैं जब ना डीटीज बड़े अच्छे से कार्व आउट हुए हों, ये बढ़िया डीटीज है। इसलिए अक्सर जब जाते हैं मायापुर जाते हैं, मायापुर में कई मंदिर हैं है ना, वहां विग्रह इतने अच्छे से कार्व आउट नहीं है, या उनकी पेंटिंग थोड़ी आगे भी छोड़ गई है, ना फीलिंग्स नहीं आती ना कि भगवान यहाँ वाकई में है या नहीं है। लेकिन हमारे इस्कॉन टेम्पल में ना वहाँ तो फीलिंग आती है। तो निश्चित रूप से जो अगर कोई गौड़ीय वैष्णव प्रामाणिक मंदिर है वहाँ प्रामाणिक सेवा चल रही है तो भगवान वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह की जो रुचि होती है उसको बोलते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि, यानी कि ना वस्तु में अगर विशिष्टता हो तब तो जो रुचि आती है, लेकिन अगर वस्तु में विशिष्टता ना हो तो रुचि नहीं आती। जैसे जो कीर्तन करने वाला अगर वो बड़े राग बढ़िया बढ़िया ले रहे हैं हरे यारे प्रभु जी क्या कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा अमेजिंग प्रभु जी, अमेजिंग, मतलब दिल को छू गया है इधर ना, सो नाइस। और अगर उसमें म्यूजिकल एलिमेंट कमजोर है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु जी आप मत कीर्तन क्या करो प्लीज, दुख पहुंचता है राधिका रमन जी को जब आप माइक के आगे आते हो। तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि, तो इसलिए जब विग्रह बहुत अच्छे से कावड़ होता तो मानते कि ना ये तो असली वाले हैं, जो सही से कावड़ उठने करते नहीं वो थोड़े नकली हैं। लेकिन भगवान के विग्रह हैं वो सारे अभिनय, प्रोवाइडेड वहां पर प्रमाणिक रूप से भगवान की नियमित रूप से प्रमाणिक रूप से सेवा अर्चना चल रही हो तो प्रमाणिक होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि सपने में आके फिर से कम्युनिकेट किया श्री माधवेंद्रपुरी को कि आप ये चंदन दे दो वहां पर गोपाल जी की सेवा में और इस प्रकार से आप जो है वापस आ जाओ। तो वहां पर फिर उन्होंने सारा गोपी चंदन दे दिया, जो चंदन था चंदन दिया, मलाई चंदन साथ में कर्पूर, और इसको मिक्स करके फिर भगवान के ऊपर लगाया गया। और फिर इस तरह से माधवेंद्रपुरी जो एक्सटेसी में थे कि किस प्रकार से गोपीनाथ जी के ऊपर लेप हुआ और फिर जो है वो वापस गए और बहुत ही आनंद भोर होकर कभी चलते थे, कभी गिरते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे, इस तरह से श्री माधवेंद्रपुरी जो है वो वापस पहुंचे हैं धाम में, वृंदावन धाम में। तो भगवान ने जो है ये लीला की विशेष रूप से अपने भक्त का यश बढ़ाने के लिए, आप देखा जाए कि ना इसमें हुआ क्या, भगवान ने किया क्या, माधवेंद्रपुरी को बोला कि ना मेरे लिए चंदन लेके आओ और बोला चंदन की जरूरत है चंदन वहीं दे दो, तो क्या घूमने फिरने के लिए भेजा था भगवान ने भक्त को? भगवान ने श्री माधवेंद्रपुरी को भेजा था माधवेंद्रपुरी का यश बढ़ाने के लिए कि आप जाओ रेमुणा में भी आपका यश होगा और जब जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पर भी आपका यश होगा। तो भगवान का प्लान था माधवेंद्रपुरी जी का यश बढ़ाने का। लेकिन एक्चुअली देखा जाए अगर एक्सटर्नली क्या प्लान था, कहते मेरे चंदन लेके, कहता नहीं चंदन ना वहीं पे लगा दे, चंदन की जरूरत नहीं मेरे को, कहते अरे भाई ये आना जाना कोई आसान है वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल, उन्होंने मेरे को चंदन की जरूरत नहीं वहीं लगा देना हो जाएगा अपना। Why? Because Lord wanted the glories of his pure devotee to be spread everywhere. भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं, भक्त हैं वो भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं और जो भक्त होते हैं जो भगवान होते हैं अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है, ऐसे प्रभुपाद जी के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि कौन किसका यश बढ़ाता है। प्रभुपाद जी ने जितना ग्लोरीफाई किया भगवान को, माई गॉड 18,000 श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य देना शब्दार्थ के साथ, 11,555 प्यार चैतन्य चरितामृत के, इसके अलावा करीब 80-90 बुक्स इतना भगवान के ऊपर, मतलब ये रिकॉर्ड तोड़े अमेजिंग। और हम देखेंगे ना जितनी ज्यादा बुक्स प्रभुपाद जी के ऊपर लिखी गई है ना इतनी बुक्स किसी व्यक्ति के ऊपर लिखी गई, 6 volumes, 7 volumes हो चाहे प्रभुपाद लीलामृत के या ट्रांसेंडेंटल डायरी 7 volumes, इतना ज्यादा किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया आज तक जितना श्री प्रभुपाद जी के बारे में लिखा गया, नो वन हैज एवर रिटन सो। तो भगवान में उनके भक्तों में प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन किसको ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। तो भगवान में और प्रभुपाद जी में कॉम्पिटिशन चला है कि कौन किसको ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। और इस प्रतिस्पर्धा की खूबसूरती यह है कि इस प्रतिस्पर्धा में आज तक कोई नहीं जीता, ना तो भक्त जीत पाया आज तक ना भगवान जीत पाया। भगवान ग्लोरीफाई करते हैं भक्त को, भक्त कहता है अच्छा जी ये बात तो देखो अभी हम क्या करते हैं अभी आपके लिए ये बात। इस तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है एक दूसरे का यश बढ़ाने का और इस प्रतिस्पर्धा में आज तक कोई नहीं जीता। तो इस प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी का यश बढ़ाने के लिए भगवान ने सारी लीला की। ठीक है ओके, हम ये भी विराम देंगे, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन एनी कमेंट? यस प्रेमानंद प्रभु
तो जैसे यश की बात हो रही थी और बताते हैं कि भगवान के भक्तों का यश सबसे महान होता है, परंतु हम देखते हैं कि बाहर नॉर्मल जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, सुपरफिशियली दे अपीयर टू बी फार मोर फेमस देन एनी डिवोटी।
आपने अपने प्रश्न में ही जो है बड़ा अच्छा उसका जवाब दे दिया, सुपरफिशियली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, वो सुपरफिशियली भक्तों से ज्यादा ग्लोरियस है। उनके सामने लोग शीश झुकाते कहते हैं जी आप बहुत अच्छे हैं, आप क्या है सर आज जब से आप आए ना मतलब पूरे ऑफिस का ना काया मतलब पलट गई है, और पीठ पीछे कहते हैं अब यार खच्चर आदमी बिगाड़ आदमी ओके, जान निकाल के रखी हम लोगों की, इतना डिसिप्लिन की क्या आवश्यकता भाई है, इतने फन्ने कहाँ बन रहे हो आप, और सामने सर यू आर सो ग्रेट सर। तो इसलिए इस तरह के लोगों का जो यश है वो सुपरफिशियल है, लेकिन भगवान के भक्तों का यश क्या होता है, उनकी अनुपस्थिति में भी ना भक्त लोग याद करते हैं उनको, कहते हैं प्रभु जी आए थे ना इतना अच्छा था, आई प्रभु जी नामृत टू के लिए गए हुए हैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, पूरा मंदिर जैसे सुना सुना हो गया ना, ना प्रभु जी अब वापस आ जाए, बस नामृत टू कंप्लीट हो जाए तो रुक्मिणी कृष्ण जी वापस आ जाए, जान आ जाए ऐसे मंदिर में है ना, राधिका रमन जी ना बड़े उदास उदास नजर आ रहे हैं ना, रुक्मिणी कृष्ण वो है ही नहीं अभी यहाँ पर, तो ना भगवान भी बड़े उदास उदास है, मंदिर बड़ा उदास है, प्रभु जी आ जाए, उनकी अनुपस्थिति में भी हम प्रभु जी को याद करते हैं, तो ये भक्त का यश है।
जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस और ऐसे उनके टेंपल से मनाया जाता है और बताया जाता है उनको, मीन्स लोगों का सही में कई बार ऐसा लगता है इतना भाव है जब वो आते हैं देखते हैं, बट सुपरफिशियली हम किस लेवल पे कहेंगे, मतलब किस
भाव
किस
का भाव है
समझे,
ऐसे ऐसा होता है, ऐसे रजनीकांत है, रजनीकांत के कई मंदिर हैं है ना, अगर हैदराबाद में अगर आप बोल दो ना रजनीकांत इज नॉट गॉड, आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, तो भगवान है भैया, एकला ईश्वर रजनीकांत आर सब भिन्न, तो ऐसे हैं आपको देयर पीपल लाइक दैट, लेकिन इनका यश ना हमेशा नहीं चलता, किसी बुक में कभी ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि आइए समाधि बुक में रजनीकांत का नाम लिखा हुआ है, कभी नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का यश यह है कि 500 साल पहले भी जो भक्त हुआ था आज उसकी जीवनी पढ़ी जाती है, आज उसकी जीवनी के ऊपर कथाएं होती हैं, दिस इज द ग्लोरी ऑफ अ डिवोटी। श्री प्रभुपाद 1977 में गए, आज भी जो है प्रभुपाद जी को के कितने एनेक्डोट्स हैं, स्टोरीज हैं, पास्ट टाइम्स हैं, आज हम डिस्कस करते हैं, पर जो लोग होते हैं इस तरह के ग्लैमरस लोग होते हैं, जब वो होते हैं तो जय जयकार होती है, तो वो चले जाते हैं, इट्स ऑल फिनिश्ड। इसलिए कितने सारे ऐसे फाउंडर भी हैं विद सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सोसाइटीज, वो चले गए पीछे से, उनकी सोसाइटी क्या है, प्रोस्टिट्यूशन हाउस है, दैट्स इट, क्योंकि उन्होंने बोला सेक्स से समाधि तक, संभोग से समाधि तक हम पहुंचेंगे जी, तो जब वो थे हुआ कुछ, वो खुद सेक्सुअल डिसीज से मरे तड़प तड़प के बाद, और है और बाद उनके बाद जाने की बात है, उनके सेंटर क्या है आज वैश्यालय है, दैट्स इट। तो इसीलिए ऐसे लोग ग्लोरी है, लेकिन कितने समय तक, जैसे एक समय था राजेश खन्ना, राजेश खन्ना की स्माइल, ओए अभी को याद करता है, ये घर में आज भी तस्वीर लगाई होगी भाई 30 साल पहले, भाई राजेश खन्ना जी की स्माइल बिना, अरे को याद करता है आज, कोई नहीं करता, कहता वो उसका समय था, आज रणबीर कपूर का समय है, क्या बंदा है यार, वहां 25 साल बाद कोई और आए, कहता है रणबीर कपूर है, क्या रणबीर कपूर खच्चर बेकार आदमी है। तो इसलिए भक्तों का यश तो इवन सालों साल बना रहता है, उनकी अनुपस्थिति में बना रहता है।
कृपया जी कभी ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं अमेरिका, अगर इनका भी यश फैल रहा है तो डिवोशनल सर्विस की वजह से फैल रहा
है 100%। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यश के फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि वो सभी प्रकार के संतों का सम्मान करते हैं, चाहे वो निराकारवादी संत हो या जैन संत हो, वैष्णव संत हो, शैवाइट संत हो, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सभी का सम्मान करते हैं, और क्योंकि वो संतों का सम्मान करते हैं तो उसमें क्या वैष्णव का सम्मान भी करते हैं वो, इसीलिए जो उनके पास आशीर्वाद जो मिल रहा है ना, जो संतों के आशीर्वाद है, इसी से उनकी रक्षा भी हो रही है, इसी से उनका यश भी फैल रहा है, जस्ट बिकॉज ही इज रिस्पेक्टिंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वो खुद क्या फिलोसफी फॉलो करते हैं दैट इज सेकेंडरी, लेकिन वो खुद वैष्णव का और भक्तों का सब प्रकार के संतों का सम्मान करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए टाइम्स मैगजीन में नंबर वन थे फॉर सम टाइम, टाइम्स मैगजीन वॉज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ फेम, वेरी फेमस। आजकल योगी जी हैं, ही इज वेरी फेमस, धूमगड़ा का मजा कर रहा है यूपी में, पर उसका कारण भी क्या है, बिकॉज ही इज फेवरेबल टू दी डिवोटीज, संतों के लिए क्योंकि फेवरेबल है, उनका आशीर्वाद देते हैं, चरण छूते हैं, शीश नमाते हैं उनके आगे, इसलिए इनका यश। तो ये वास्तव में कोई इनडायरेक्टली भी अगर कोई करे इस तरह से भक्ति अगर, तो उसका यश फैलेगा, भक्त का यश का क्या 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 नहीं फैलेगा। या प्रभुपाद जी का यश, प्रभुपाद जी का यश क्या है, देयर वाज वन डिवोटी हु वाज शी वाज शेयरिंग प्रभुपाद जी के उसमें ग्लोरिफिकेशन में तिरुभाव में, कि एक बार ना प्रभुपाद जी तिरुभाव के दिन गुरुकुल में वो भक्तों बच्चों को पढ़ा रहे थे गुरुकुल में श्री प्रभुपाद जी के बारे में, तभी ना वहां पर एक एयरप्लेन आया गुरुकुल में, उसमें बहुत ही सुंदर लोग बैठे थे जो कि देवी देवता थे, और वही बैठ के सुनने लगे, तो बताते बताते जो है माता जी ध्यान गया इनकी ओर, तो माता जी आप लोग कौन है, बताया हम लोग देवी देवता है, तो माता जी ध्यान गया उस प्लेन में, छोटा सा प्लेन था, उसमें प्रभुपाद जी की तस्वीर थी। कहते हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की तस्वीर आपके प्लेन में क्या कर रही है? तो देवी देवताओं ने कहा, देखिए माता जी, प्रभुपाद जी सिर्फ आपके गुरु नहीं है, श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है। जगत गुरु का मतलब सिर्फ इस अर्थ के गुरु नहीं है, वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम के गुरु हैं, और इसलिए वो हमारे गुरु भी हैं। इसलिए हमने जब देखा हमारे गुरुदेव का कोई प्रशंसा इतनी सुंदर तरीके से कर रहा है, और क्योंकि हम भी उनके शिष्य हैं और हमारे गुरु हैं ना, इसलिए हम आपको सुनने के लिए आए थे। ये भगवान के भक्तों का यश है कि देवी देवता भी उनका यशोगान करते हैं। That's the thing. तो नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, इनका यशोगान इसलिए चल रहा है, रीजन बींग दे आर डूइंग गुड वर्क फॉर श्योर, इनकी भावना बड़ी अच्छी है, देश का विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास संतों के आशीर्वाद है। अदरवाइज जैसे ये काम कर रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति इनको मार सकता है, इनको वो है एक्स वाई जेड सिक्योरिटी चल रही है इनकी ना। नरेंद्र मोदी एंड योगी जी दे आर प्रीटी बिंदास पीपल, गाय के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, थोड़ा योगा वोगा भी करेंगे, भगवान की आरती वगैरह पूजा भी करते हैं लोग, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है। पर कौन बचा रहा है इनको? इनको भक्तों के आशीर्वाद बचा रहे हैं वास्तव में।
किसी भक्त का अपयश भी अगर हो तो उसको कैसे देखा जाए?
अगर भगवान के भक्त का कभी अपयश हो तो भगवान उसको कह रहे हैं, बेटा अपनी साधना बढ़ा, तेरे को मैंने साधना अच्छी करने के लिए लाइमलाइट से दूर किया। जब तक लाइमलाइट में रहेगा तू ऐसे कैसे करता रहेगा, है ना, तो किताब खोल नहीं पाएगा। मैं लाइमलाइट में हूं ना तो ऐसे ऐसे करता रहना मेरे को लाइमलाइट। तो जब किसी भक्त का अपयश हो तो कहना चाहिए, ठाकुर जी आप चाहते हो यानी कि मैं साधना अच्छी करूं, ठीक है, आपसे मैं चौसन माला करूंगा। तो भक्त के लिए यश अपयश कुछ नहीं है, जब यश है तो प्रचार है, जब अपयश है तो मतलब साधना का समय है, और इस समय जो है दर्शन का समय है। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री राधे अधिग्रमण जी की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। चंदन यात्रा।